आत्म धर्म के संबंध में साधारण लोगों की कुछ भ्रांत धारणाएं हैं जो सनातन नहीं है उसी को सनातन समझ लेते हैं। सनातन माने भूतकाल में भी रहने वाली, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में है, जो सदा रहने वाली है वो सनातन है। एक बात सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि लौकिक कर्तव्य में और अकर्तव्य के विषय में परमार्थिक क्या कर्तव्य है, इन संबंधों में वेद ही एकमात्र हमारे प्रमाण है। जो कुछ हम करते हैं अच्छा वो स्वयं भगवान से जो प्रकटित वेद है और उसी के द्वारा निर्णय होता है। और वेद कहने से भी वेद, उपनिषद, स्मृतियां, महाभारत, रामायण, समस्त पुराण और उनमें भी महा महापुराण ये श्रीमद्भागवत प्रमाण का शिरोमणि है, अमर प्रमाण है। किसी भी विषय में विचार करने के लिए इन लोगों पर निर्भर न करके ही विचार करता हूं, तभी हम लोग सुखी और शांत रह सकते। जो लोग इनको नहीं मानते वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, संभव पाई नहीं। इसलिए हम लोग जो कुछ कहेंगे शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर, जो लोग शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर नहीं करते अथवा शास्त्रीय प्रमाणों का भी अर्थ उल्टा उलट उलट करके कहते हैं उनके विचार ठीक नहीं। आजकल यही हो रहा है, आजकल देखिए वेद विरोधी और धर्म का उतना प्रचार हो रहा है और धर्मों का जो सनातन नहीं है उनका प्रचार होता है। इसलिए आज मैं सनातन धर्म के संबंध में कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं। सनातन कहने से सनातन जो नित्य कार्य जिसकी स्थिति है धर्म का नाम सनातन धर्म है और निशाधार विचार उदगम रखाता है। ऐसे कहा जा सकता कि जो नित्य वस्तु का धर्म है, जो स्वयं नित्य हो, जब विचार करते हैं शास्त्र के अनुसार में तो हम लोग देखते हैं संसार में दो वस्तुएं जिनके हैं। अजर अमर शाश्वत वेद हो गए, एक को कहा गया है मन और दूसरी को कहा गया परमात्मा। परमात्मा शब्द की सर्वोच्च स्थिति भगवान कृष्ण में, और हमारे गीता में भी भागवत में भी सर्वत्र एक ही बात कही है, विभिन्न शब्द जैसे कहा गया नित्यो नित्याना चेतस चेतनाना, एक अनेक चेतन है, एक नहीं अकनी कोटि भी काना कोटि कोटि भी करोड़ों भी काना कम है, अनंत है जीव अनंत एक पव अनंत भगवान एक। अब गीता में भी ऐसा नित्यो नित्याना चेतन चेतना, चेतनों में भी जीवात्मा चेतन, इन सब चेतनों में भी परम चेतन परमात्मा अथवा भगवान श्री कृष्ण। ये नित्य चेतन समस्त आत्माओं के मूल आत्मा है। अब इनमें से जीवात्माओं का जो नित्य है, ममई मनसो जीवनों के जीव भूत सनातन, जीवात्मा के लिए कहा गया कृष्ण करना है, ममई मानसो मेरा भी विनाम सही देती हूँ, और ये सनातन है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है जिसका विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होता है जीव का नहीं। और भगवान के लिए कहा अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप्रजौश्याम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सना, ये श्री कृष्ण के लिए परमात्मा जी ने कहा। इसलिए कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, इनसे बढ़कर के परमात्मा नहीं। वही राम कृष्ण राम और दूसरे दूसरे अवतारों के रूप में आते हैं, इस प्रकार से समझना है। अब जीव का जो नित्य है वो भगवान के प्रति क्या उसका करना है, यही नित्य कर्म है, क्योंकि जीव भी नित्य है परमात्मा भी नित्य है। इसलिए जीव का कर्म भगवान का, भगवान का नहीं जीवों का, भगवान के प्रति जो कर्म है यही नित्य धर्म सनातन धर्म वैष्णव धर्म भागवत धर्म इत्यादि के रूप में कहा जाता है। यही एकमात्र जगत है, कृष्ण एक है, भगवान एक है, चाहे उनका विभिन्न नाम हो देश का अनुसार। इन जीवों का जो धर्म है उनके प्रति यही नित्य सनातन धर्म है। इसी को श्रीमद् भागवत इत्यादि में भी कहा गया है, उपनिषदों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा है सर्वत्र, और इसी की व्याख्या पुराणों में की गई और विशद व्याख्या महाभारत और वाल्मीकि रामायण इत्यादि में। इसी उदाहरण के साथ में गुरुगम्य रूप में जो लोग साधारण लोग समझ करके इसका आचरण कष्ट। अब ये है क्या जीव का वो धर्म क्या है, शाश्वत जो नित्य सनातन धर्म हो गए क्या, इसके लिए कहते हैं समय पुंसा परो धर्म यतो भक्ति। कृष्ण के प्रति जीव का स्वरूप धर्म स्वरूपानुबंधी धर्म, शरीरगत नहीं स्वरूपानुबंधी, अर्थात जीव के शुद्ध निर्मल शरीर का धर्म परम पुरुष सर्वशक्तिमान रस के समुद्र अघटन घटे पटियसी शक्ति वाले कृष्ण का नित्य सेवक ये जीव है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण का। अभी दासत्व तो गुण करके हम माया का दास हो रहे हैं, करना पड़ेगा वही जो स्वरूप में है और इधर पर आप जा नहीं सकते, किंतु कहीं शुद्ध रूप में कहीं मरछाई में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्त्री की सेवा कर रहे हैं, स्त्री पति की सेवा कर रहे हैं, कोई विषयों का सेवन कर रहे हैं, कोई पुरुष कर रहे हैं, कोई सेवा ही है किंतु पार्टेड रिमुनरेशन, शुद्ध हो सेवा नहीं है। इसीलिए शुद्ध के लिए कहा गया स्वयं पुरुषा, निश्चित रूप से भगवान की इंद्रियातीत जो भगवान है, वाक्य इत्यादि अगोचर जो भगवान है, उनकी जो नित्य सेवा है और वो सेवा उनको प्रसन्न करने के लिए ही है, यही जीव के लिए परम धर्म है। ये कैसा है? नयन सत्य भाई, कभी बंद नहीं होने वाला और समस्त इंद्रियों के द्वारा कार्य होगा, ऐसा ये इसी को हमारे और दूसरे शास्त्रों में भी तरह तरह से कहा, ईश्वर एक प्राण व्यक्ति ईश्वर, ईश्वर में प्राण जे ही के ना उपाय ना कृष्ण मनोनिवेश है। और समस्त परिभाषाओं के भक्ति के जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको क्रोधीभूत कर, इधर आइए इधर आइए, क्रोधीभूत कर समस्त परिभाषाओं को जितने वेद परिषद शास्त्र में यश देवे परापति यथा देवी तथा ये सबको क्रोधीभूत करके हमारे चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्रील रूप गोस्वामी ने उन्हीं के प्रेरणा से ये उसकी परिभाषा आज इंद्र है। परिभाषा लिखी है वो है अन्य अभिलाषिता पुण्यम ध्यान परमात्म आनुकल्यनम कृष्णानुशीलनम भक्ति साधारण रूप में समझिए अन्नाभिलाषिता पुण्यम ज्ञान परमात्म आनुकल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति भक्ति किसको कहते हैं? जब अपनी शारीरिक इंद्रियों के द्वारा तन से मन से वचन से और उसके अतिरिक्त भावना से अनुकूल रूप में प्रतिकूल रूप में सब प्रकार से कृष्ण की नयनतंत्रमयी सेवा जो गुरु और वैष्णव के आनुगत्य में हो इसको भक्ति कहते हैं। तन से मन से वचन से और उसके अतीत भावना से अनुकूल रूप में प्रतिकूल में उनको छोड़कर प्रतिकूलों को त्याग कर अनुकूल रूप में गुरु वैष्णव के आनुगत्य में जो इस विषय में एक्सपर्ट है तत्वविद है जब यह भक्ति की जाती है कृष्ण के लिए ही की जाती है और कृष्ण को ही प्रसन्न करने के यहाँ पर कृष्ण का तात्पर्य कृष्ण और जिस रूप में अवसरित होते हैं भगवत तत्व के रूप में उनके यहाँ बात एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कृष्ण से लेकर विष्णु तक ये सारे विष्णु भगवत तत्व शंकर जी सदाशिव के रूप में भगवत तत्व है किंतु रुद्र जो गुणावतार हैं ये भगवत तत्व नहीं उनके दास हैं समस्त वैष्णव में अप्रकट हैं ब्रह्मा जी उनके सेवक हैं तब फिर दुर्गा जी की और गणेश जी और लोगों की तो बात नहीं है इसलिए कहीं भक्ति का उपयोग भगवान से ही है जो भगवत तत्व है इस पर यदि गणेश की हो माता पिता की हो और जैसे कहा ब्रह्मचारी तो भक्ति नहीं कही है उनके प्रति श्रद्धा है भक्ति करने से ये बोल और इसमें भी एक शर्त है ये तो भक्ति हुई जो मैंने कहा किंतु यदि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी लौकिक पारमार्थिक कोई भी इच्छा हो तो भक्ति नहीं वो कर्म मिश्रा भक्ति हो जाएगी आरोप सिद्धा संग सिद्धा इत्यादि भक्ति हो जाएगी सर्व सिद्धा वो भक्ति नहीं कर सकती जिसको समझना उदाहरण दे करके हम लोग समझाएंगे कोई भी भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त भगवान की जो सेवा है तो भक्ति नहीं तुम नहीं जैसे आप संक्षेप में बता रहा हूं ध्रुव जी की भक्ति भक्ति थी, किंतु वो कर्म मिश्रा भक्ति थी। भगवान की सेवा की, भगवान का ध्यान चिंतन किया, किंतु उसका फल मंगा जो हमको स्वीकार दिया और भगवान ने भी दे दिया उनको 36,000 पर करना। ये भक्ति का फल, ये कर्म मिश्रा भाव। भक्ति किया किंतु भगवान की सेवा के लिए नहीं किया, किया किसके लिए? अपने भक्ति नहीं। और भी उनका एक तटस्थ लक्षण और है, अलग नहीं हुआ। भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो, अपने लिए ना करो, कृष्ण की सेवा। इसमें कुछ भी लेना नहीं है, जैसा उन्होंने कर देना है सफर सब कुछ कृष्ण की। पाटे मारी और हरि गुरु वैष्णव। और दूसरी बात है यह भक्ति कर्म क्या दो तपस्या इत्यादि से अच्छा नहीं करने वाली। अर्थात लौकिक कर्म जो शुभ कर्म है उसके द्वारा भक्ति होती है, ये कभी नहीं। ज्ञान से भक्ति होती है नहीं, योग से भक्ति होती है। स्वयं प्रकाश, जैसे कृष्ण स्वयं प्रकाश है, उनको कोई प्रकाश करने वाला नहीं है, ये भक्ति भी वैसे ही है। ये स्वरूप शक्ति की वृद्धि है। इसलिए कृष्ण जैसे स्वाधीन है, स्वतंत्र है और अपने आप प्रकट होते हैं किसी के हृदय में प्रसन्न होने, वैसे भक्ति की भी ऐसी ही वृद्धि है। उनको कोई भी प्रकट, यहां तक कि कहा गया है कि ये भगवान भी उसको उसके कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं, बस एक भक्त ही उसका कारण जो मतलब निकाय इत्यादि बहुत प्रकार के विचार। अब हम लोग इसको समझाने के लिए हम लोग सबसे पहले गुरु तत्व पर विचार करें। यदि ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई हो, बुद्धिमान सब जानने वाला, कभी बिना गुरु के ज्ञान नहीं। बिन गुरु भवन की तरह न कोई जो निरंज संकर सम हो ले। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा। भगवान का भक्ति करते हैं, गुरु से कोई संबंध नहीं, कला की क्या जरूरत है, भक्ति नहीं आए क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, वो आई नहीं सकती। अतः विचार करके इस सनातन धर्म को समझे, यही भक्ति ही सनातन है और इसी का क्रम विकास है। पहले ये साधन भक्ति कहा, फिर भाव भक्ति कहा, इसके बाद में प्रेम भक्ति कहा, जिसके बाद में भक्ति नाम अपना छोड़ करके प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव मानन भाव और इससे पहला राधिका का सर्वोच्च भाव आनंद भाव। ये भक्ति नीचे में श्रद्धा से लेकर प्रारंभ में श्रद्धा से लेकर चलो आदर श्रद्धा और अंतिम सोपान काम मान है। इसलिए राधा जी का जो अपना भाव है जो इसमें भी नहीं है, वो भक्ति का चक उत्कर्ष है, जिसको मदनक भाव करते हैं। ये भक्ति का ही हम लोग कुछ कुछ इसका यहाँ पर विवेचन करेंगे, जैसे कि साधारण लोग नहीं समझते। हम लोग तो यही समझ रखते थे दुनिया के साधारण लोग जन साधारण आएगा, जैसे पिछली बार कम से कम तो 8-10,000 आदमी आए थे, तो इस बार वर्षा से सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था ये लोग समझे सुने और धर्म की तरफ में अग्रसर हो, भक्ति के तरफ में अग्रसर हो। कब? कल परसों नहीं, आज भी अभी। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पद में करते हो ये भी बहुत। ये मैं नहीं कर रहा, शास्त्री कहते हैं तुम न मजते न पते तब अनुमत तुझा निश्चय जाए। हमारे तुमने वो स्वामी जी या उनके पिताजी स्वयं वो नारायण स्वरूप है बजाय तो तब जब विषय को सब जगह पड़ा गठे क्यों करते थे क्यों करते थे पैखाने के कीड़े में भी परस्पर पत्नी पत्नी बाप बच्चे सब और सुखी भोग और सब मिल जाता है उसके लिए क्या चिंता करो अभी जन्मे अभी तुरंत आत्मकर को भगवत करो जिसे तुम्हारा कल्याण हो गया कल क्या होगा कुछ पता नहीं अभी अमेरिका ने सुना होगा जो क्या ये चल रहा है चल रही है और कितने आपके सरबार हो रहे हैं क्या हो रहा है एक पूछा आया और क्या हो गया भारतवर्ष में गुजरात में और कहीं एक बार दूंगे इत्यादि में क्या और इस नामी ना क्या क्या पानी क्या पढ़ रहे हो ही बहुत पढ़ रहे आज से जो सुन रहे हैं सनातन धर्म आपको नमाज पढ़ने के समय में 15 बार सुनना पड़ेगा बैठना पड़ेगा तब खुल जाएगा और विश्व भक्ति में कुछ भी नहीं कर सकते अरे भैया हाथ उठा कर कैसे नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण को अब इससे साथ क्या हो सकता है इसलिए देरी न करके विलंब न करके आज इसलिए गुरु के चरित्र के संबंध में श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है व्यास जी और उनके गुरु नारद जी के कुछ हमारे रसानंद ब्रह्मचारी जी गुरु का विभाग किया और उसका सार संतान अपने ब्रह्म सूत्र उन्होंने बनाया अरे कल साढ़े पांच सूत्र थे उसको समझाने के लिए पुराणों की रचना हुई विशेष करके उसका अर्थ यथार्थ रूप में करने के लिए गायत्री का भाष इत्यादि प्रकट करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की आप लोगों ने यह सब सुना और उसमें बताया गया कि गुरु की बिना पिता के उनका चरणाश्रय किए बिना भगवत भक्ति और भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती व्यास जी ने नारद जी की कृपा से भक्ति योग में प्रतिष्ठित होकर के समाधि वो हुए तात्पर्य क्या है भक्ति माने शरणागत मैं कुछ नहीं जानता हूँ आप हमारे ऊपर में कृपा कीजिए सब तत्वों को प्रदान कीजिए साथ ही साथ उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्ण माया से ज्यादा पाप किया उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा कैसे पूर्ण कब होगा जबकि पराशक्ति माया शक्ति समस्त लीलाएं सब कुछ प्रकट हो उन्होंने उसमें देखा पीछे की तरफ में माया लज्जित जंतुओं को मैं कष्ट दे और सामने में देखा अपश्यत पुरुषम पूर्ण कृष्ण को देखा श्रीमती राधिका को देखा गोपियों को देखा राष्ट्र जाति लीलाओं को देखा जन्म से लेकर के सात लीलाओं को उन्होंने देखा समाधि में सब कुछ उसमें देखा और नंद बाबा चंदोड़ा मैया परिवार सबको देखा जो जो लीलाएं की जन्म से लेकर के सारी लीलाओं का उन्होंने उसमें दर्शन दिया और तब जैसे आप नारायण कृष्ण परम पुरुष से भक्ति युद्ध पर देते साक्षात भक्ति उन्होंने जो कुछ समाधि में देखा जो कुछ देखा था उसी को लिखा लिखा मैंने उनको प्रकाश किया भगवान की लीलाएं नित्य है कोई नवीन नहीं इसलिए व्यास जी ने जो जो कृष्ण की लीलाएं जैसे हुई थी वो देखा पहले उन्होंने वेद शास्त्र इत्यादि जो प्रकाश किए उसमें धर्म और काम मोक्ष की बात की कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया और इस बार उनकी कृपा से कुछ लीला कथाओं का वर्णन किया जिसके श्रवण करने से तो वो भय दूर हो जाता है और कृष्ण के चरणों में आए प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति लाभ उसी को समाधि भाषा को शुभ स्थान इसमें शुद्ध भक्ति की बात कही गई है एकमात्र वैष्णव के लिए इसमें कृष्ण की जो सेवा है इसमें गोपियों का जो सेवा है वही सर्वोत्तम है इस भागवत की अपने भजन के प्रभाव से कुछ भगवत अनुभूति होनी चाहिए और साथ ही साथ में संसार से भी होनी चाहिए। तो ऐसे गुरु का पदाश्रय करने से कुछ भक्ति हो सकती। इसलिए हम लोग भक्ति के स्तरों पर विचार करने जा रहे हैं। भक्ति के स्तरों में भक्तों को पांच भागों में विभक्त किया गया। एक होते हैं ज्ञानी भक्त, फिर होते हैं शुद्ध भक्त, इसके बाद में प्रेमी भक्त, इसमें प्रेम पात्र और प्रेमानंद भक्त, पांच प्रकार। इनमें जो पांच प्रकार के भक्तों की बात बताई है, इनमें ध्रुव कहीं भी नहीं है, क्योंकि भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। तो अभी हम लोगों को समझना चाहिए, साधारण लोग ऐसा ही चाहते हैं, समझते हैं। जैसे एकलव्य को गुरु भक्त मान करके अपने शिष्यों का नाम भी एकलव्य रखने लग गए हैं, मूर्ख लोग हैं तब तो नहीं जानते। एकलव्य ने अपना अंगूठा दान कर लिया अपने गुरु को, उन्होंने ले लिए द्रोणाचार्य ने और मालवीय के साथ साथ काट करके और उनको दे दिया, और बड़ा भक्त है, फिर गुरु जी की बात नहीं हम मानेंगे। ऐसे मूर्ख शिष्य लोग हैं, गुरु का आदेश पालन करते हैं। उन्होंने चाहा कि तुम कृष्ण से और अर्जुन से बराबर करने मत जाओ, उनके प्रति ईर्ष्या छाड़ो, किंतु माना नहीं, अर्जुन को हराने के लिए, मारने के लिए और कृष्ण को भी परास्त करने के लिए, मारने के लिए वो द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चाहता था, और उन्होंने उसका अपराध न उसे अंगूठा माना, तो भी अभ्यास किया। अंत में कृष्ण के चक्र से मारा, इसलिए अगला गुरु नहीं है, उसमें गुरु निष्ठा नहीं है, गुरु ही है, ये बात नहीं मान। उसी प्रकार से अब गुरु की सेवा, गुरु की मनोविज्ञाता के अनुसार से चलनी चाहिए। तो गुरु जी ने देखते हैं भक्ति तो है, क्योंकि भगवान की तो आराधना है, किंतु उनकी भक्ति में कहां त्रुटि है जो शुद्ध भक्ति में नहीं आ सकती। इस पर
भक्ति वेदांत के महाराज जी संक्षेप में प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अब समय होने जा रहा है 6:30 बजे के पहले ही हम लोग समाप्त करेंगे। केवल 6 महीने में ही अब भी कैसे अन्न जल त्याग कर दिया, यहां तक कि श्वास लेना भी बंद कर दिया, समाधिस्थ हो गए, भगवान का दर्शन मिला, और भगवान ने उनकी कामना पूर्ति के लिए 36,000 वर्ष के लिए राज्य दिए। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में उनके लिए विमान आया, उनको परम धाम में जाने के लिए, नाज्य मैं अकेले नहीं जाता, मेरी मैया कहाँ है, आगे मैया चलेगी तब मैं जाऊंगा। अभी मैया के प्रति भी मोह है, इसलिए उनको कौन सा लोक मिला, तो लोग वैकुंठ नाम नहीं मिला, परिधाम नहीं मिला, भगवान की कोई सेवा प्राप्त नहीं, वो ध्रुव लोग मिले। जिसकी सूर्य भी परिक्रमा करता है वो नश्वर नहीं, अभी नश्वर स्थान है, बात तो ठीक है, किंतु वहां पर भगवान की लीलाओं का प्रकार, जन्म इत्यादि लीला और ये सब नहीं है। यहाँ तक जैसे रामचंद्र जी की लीलाओं में हनुमान जी की जो सेवा है वो भी नहीं है, और इससे अधिक ही तो बात है। इसलिए उनको ध्रुव लोक में रहना पड़ा और उसी से संत। इसके बाद जन नारायण नारद की जब कृपा हुई, नारद जी की हो सकता है, किंतु वहां से अब आगे बढ़ना भी मुश्किल है, वहां पर पहुंच जाता है जहां से फिर आगे नहीं निकलता। जो अपने स्वरूप के उसमें पहुंच जाता है, तो नारद जी के तो बहुत तरह थे, किंतु उनको यही चाहिए था इसलिए उनको दिया, भगवान के प्रति भक्ति भी हुई, किंतु कुछ ये त्रुटियां हैं इसलिए इसको गौणी उपासना उपाधि उपासना अथवा कर्म मिश्र भक्ति और सिद्धा भक्ति इत्यादि वहां कहा जाता है। अगले दिन हम लोग प्रहलाद जी की शुद्ध भक्ति ज्ञानी भक्त की हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आज तो बहुत आप लोग कम हैं
और भगवत प्रेमियों आप सबको मेरा प्रणाम, क्योंकि आप लोग भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। यह बात आप आज निश्चित रूप से मान के यहां से जाएं। भगवान के कृपा पात्र तो सारे जीव हैं, उसमें भी जो मनुष्य बने, मनुष्य जीवन में जिनको जन्म मिला वो विशेष कृपा पात्र हुए, और तब से अब तक यहाँ आने से पहले तक आप पर भगवान की बड़ी कृपा रही, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज के दिन आप विशेष कृपा पात्र हैं, इसके दो तीन कारण हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ बहुत संक्षेप में और बहुत आम बोलचाल की भाषा में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। महाराज श्री का आदेश है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। कहा गया कि बिना हरि कृपा के, तुलसीदास जी ने कहा बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संत, संत का मिलना बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है, एक बात। और दूसरा कहा उन्होंने फिर कि बिनु सत्संग विवेक न होई और हरि कृपा सुलभ न हो, तो दूसरी बात कि बिना उसकी कृपा के सत्संग नहीं हो सकता और वो संभव ही नहीं है। तो दो तो विशेष कृपा ये है, और कृपाएं आप धीरे धीरे जोड़ते रहिएगा। सत्संग में आप आए, कल महाराज श्री ने बहुत सुंदर बात बताई कि अगर सत्संग दो शब्द है, सत्य और उसका संग, सत्य कौन है? महाराज श्री ने कल ही निवेदन कर दिया, बता दिया हमें बहुत साफ कि एकमात्र श्री कृष्ण ही सत्य है। आप श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक से शुरू करें और अंत तक चले जाएं, सब जगह ये आया है बड़े साफ ढंग से, सत्यम परम धीमहि से लेकर गर्भ स्तुति में भी त्रिय सत्यम तक और अंत तक, कि एकमात्र अगर सत्य कोई है तो वो श्री कृष्ण है। इसकी मुझे व्याख्या करने की शायद मैं नहीं समझता कि कोई जरूरत है। और उसका संग, सीधी भाषा में संघ का अर्थ हुआ उसके साथ जुड़ना।